और जो आ गई है उसको क्या करें, उस फल को कैसे भोगें, तो समता पूर्वक भोगें। क्या होता है कि जब कोई भी कर्म अपन अज्ञानता पूर्वक बांध लेते हैं वो उदय में आता है। जैसे अपन ने क्रोध कर्म बांध लिया, क्रोध भी एक कषाय है, वो कर्म है, वो बंध जाता है। क्रोध बांध लिया, अब समय पाकर उदय में आएगा। बाह्य कोई कारण मिलेगा, किसी ने हमारे मन की बात नहीं कही, नहीं कही तो भीतर बैठे गुस्सा नाम के कर्म को धक्का लगा। मान कषाय को धक्का पहले लगता है, गुस्सा को एकदम नहीं लगता, मान कषाय को पहले धक्का लगता कि हमारे विरुद्ध, तो उसके बाद फौरन मान कषाय आगे आगे बढ़ती है और वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोध तो सबसे बाद में आता है, देखा जाए तो सबसे पहले लोभ आता है। मेरी बात मानी जाए ये लोभ, कैसे मनवाऊं मायाचारी से, फिर भी नहीं मानी गई, मायाचारी प्रकट हो गई, अहंकार को चोट लगी, अब गुस्सा आ गया बाद में बहुत। इसलिए कहते हैं कि जिसको गुस्सा आता वो तो सबसे कमजोर है, तीन ही महीने पट लेना तो चौथे तक काय हो गया। लेकिन जो लोभ मान और माया इन सब से आगे बढ़कर के क्रोध करे, तो ऐसा क्रोध उदय में आवे तब क्या करना, संवर तत्व समझना या संवर अनुप्रेक्षा समझना, इस उदाहरण से पूरा। और एक छोटी सी घटना सुना दूंगा, बस इतने ही कहना। क्या है कि जैसे क्रोध का कोई निमित्त मिला, अब मन तो हो रहा है कि क्रोध करें, तो ठीक है अब क्रोध करोगे तो पहले जरा विचार कर लो कि क्रोध करने से होगा क्या क्या। देखो अपन तो नफा का धंधा करो, मुनाफा का धंधा, बानिया आदमी हिसाब से काम करो, तो क्या हिसाब से काम करना अपने को, गुस्सा करने से लाभ कितने हैं और हानि कितनी है, ये विचार कर लो। अब क्रोध का उदय आया है और मैं क्रोध करूंगा तो मेरे अंदर क्रोध का एक संस्कार नया पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और ये जो क्रोध उदय में आया था वो अपना फल दे करके जाएगा। दूसरी चीज, एक तो अपनी संतान छोड़ के गया, एक तो अपना फल दे के गया, और इतने ही नहीं सामने वाले के प्रति हमारा इंप्रेशन खराब हो गया कि नहीं, बड़े गुस्सेल हैं। और चौथी बात कि अगर कोई बात बनती होगी तो वो भी बिगड़ जाएगी गुस्से में, तो ठीक है ना। चार चीजें, चारों में से एक भी ऐसी नहीं है जिसको हम लाभ कह सकें। गुस्सा अपना फल दे के जा रहा है, हमारी एक नहीं चल पा रही, वो अपना फल दे के जा रहा हो, इसमें भी हानि। नया संस्कार बन रहा गुस्से का, वो भी हानि। बात बिगड़ रही, वो भी हानि। इंप्रेशन लूज हो रहा है, वो भी हानि। एक भी लाभ नहीं, अरे तो ये घाटे का सौदा नहीं करना। ऐसा विचार करना, कर्म के उदय आने पर ऐसा नहीं समझना कि गुस्सा आ जाता है अपन को, नहीं, पहले पता लग जाता। अपन कई बार तो कहते थे देखो हमें गुस्सा नहीं दिलाओ, मतलब आ रहा होगा धीरे धीरे, और कचुके हो तो और आ जाए, मन तो पड़ जाता है कि अब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आता है वो। और उसी समय अगर हम सावधान हो जाएं कि ये सौदा घाटे की है, बदल लो बात दूसरी तरफ, टॉपिक क्लोज कर दो जिस टॉपिक पे, और बात छिड़ने वाली, ऐसे कई मौके आते हैं। तो हम अगर थोड़े से सावधान हो जाएं, अब मान लो तुरंत सावधान नहीं हो पाते तब के लिए, ये तो हमने तुरंत के लिए कहा, लेकिन पहले से ही व्यवस्था करके रखो ना। उसके लिए कहा है कि व्रत नियम संयम लेके रखो ताकि पहले से ही कंट्रोल रहे, उतनी चीजें तो बच जाएं जिन चीजों से संक्लेश होता है। हमने फलानी चीज का त्याग ही कर दिया, आज भोजनों में बात चीज नहीं है तो अब संक्लेश ही नहीं होना, नहीं तो अब भी संक्लेश होना था, जबकि हम तो मंदिर में पहले ही छोड़ के आए कि आज हमारे पसंद की चीज ये नहीं खाएंगे हम, और हो सकता उस दिन भोजन में ना परोसी जाए तो कोई गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मेरा तो पहले से ही त्याग। इस तरह से भी हम संकल्प लेकर के और अपने उदय में आने वाले कर्मों को बदल सकते हैं। द्रव क्षेत्र काल और भाव को परिवर्तित करके हम कर्मों के आश्रय से बच सकते हैं, बस यही संवर की प्रक्रिया है और कोई विशेष बात नहीं है। या तो हम पहले से ही ऐसा इंतजाम करके रखें कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी हम समता रख सकें, और या तो हम जब अनफेवरेबल कंडीशन प्रतिकूल अवस्था आए तब उस समय शांत रहने का अभ्यास कर लेवें तो हम संवर आसानी से कर सकते हैं। क्या हुआ, एक बार बुद्ध के जीवन की घटना है। इन सब चीज़ों को आप निश्चिंत रहिएगा, मैं और बहुत डिटेल में भी बताने के मूड में हूँ, इनको बताऊँगा, पर अभी तो थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ें, इतना अभ्यास करें फिर और। बुद्ध के जीवन की घटना है, वो किसी पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। इतने में एक व्यक्ति आया और गुस्से में था, वो बहुत गुस्से में था, और साधुओं को और देख करके उसको और गुस्सा आ गया कि क्या ये बढ़िया तो दिख रहे हैं, अट्टे कट्टे हैं और बस अकेले साधु बन गए फोकट का खाने के लिए हैं ऐसा करके। तो उसने उनको गालियां देना शुरू कर, अपशब्द कहना शुरू कर। अब सारे शिष्य मंडली में तो खलबलाहट मन भी मच ही जाती है, लेकिन बुद्ध शांत बैठे बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए, कोई गाली दे और कोई मुस्कुरा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए चले जा रहे हैं, वो गाली देता चला जा रहा, और एक के बाद एक इंटेंसिटी बढ़ती चली गई गालियों का, जो कहना चाहिए क्या उन गालियों का ढंग था वो भी बढ़िया होता चला गया। एक से एक गाली जो उसके पास थी, हो सकती थी, हाँ गाली भी अच्छे हो भले बुरे किस्म की होती है, आप क्या समझते हैं, अलग अलग वजन की होती है, उनमें भी वेटेज होती है। इतने वजन की गाली दे रहा हूँ, इतनी बढ़िया किस्म की गाली दे रहा हूँ, ऐसे करके जो है बढ़ाता चला गया। वो आधे घंटे हो गया, कोई शिष्य उठ करके और कुछ उठने को हो, उतने में बुद्ध इशारा कर दे, बैठ शांत, देखो मजा देखो अभी तुम क्या क्या दे रहे हो, उसके बाद जितना है खाली कर लेने दो उसको। अब एक स्थिति ये आई कि उस व्यक्ति ने, अब जब उससे कुछ नहीं कहा गया, इतनी दे चुके फिर भी कुछ नहीं, कुछ थोड़ा बहुत होता सामने से तो अपन को, और अब एक तरफ से कितनी देर चलेगा, सब खत्म हो गए उनके कारतूस, हाँ कारतूस ही हैं, तो सब खत्म हो गए। तो फिर उसने थूक दिया बुद्ध के, एक्साइट एकदम अति हो गए, थूक दिया, तब भी बुद्ध मुस्कुरा करके ऐसे उन्होंने अपने जीवर से पहुंच लिया। और ये जो है अब क्या कहे, कुछ भी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या करे, तो पैर पटकता हुआ उल्टे पैर वापस लौट गया। लेकिन इतने में काम पूरा नहीं हुआ, बुद्ध के शिष्य यहां अलग विचार कर रहे हैं और वो व्यक्ति वापस लौट के अलग विचार कर रहा है। दोनों देखना, बुद्ध के सब भिक्षु कह रहे हैं कि भगवान आपने रोक दिया, वरना आज तो हम, उन्होंने कहा सुनो आनंद, सुनो आनंद, उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्य का नाम था आनंद, एक बात पूछता हूं ताकि सबको समाधान मिल जाए। क्या बात भगवान, पिछले गांव में अपन जब गए थे वहां पर लोग कैसे थे? अरे बड़े प्यारे लोग थे, क्या क्या लेकर आए थे आनंद भगवान? वो तो मिठाइयां लेके आए थे, फल फूल लेके आए थे, कितना प्यार से बोल रहे थे। अच्छा आनंद ये बताओ, हमने उनके फल फूल और मिठाइयां स्वीकार की थी? नहीं भगवान, हमें आवश्यकता ही नहीं थी इसलिए हमने स्वीकार ही नहीं की। तब फिर आनंद, उन्होंने अपने उन फल फूल और मिठाइयों का क्या किया? वो तो ले गए थे भगवान, इसमें क्या बात है आप ऐसा पूछ रहे हैं? वो ले गए थे ना, हमने नहीं ली थी तो ले गए थे वापस, हाँ ले गए थे वो। बस भिक्षुओं और आनंद, मुझे भी तुमसे यही कहना, इस गांव में लोगों ने मुझे अपशब्द और गालियां दी, अच्छा बताओ हमने वे नहीं ली तो वे क्या करेंगे? उसका ले गया वापस, हमने ली नहीं। अरे बहुत कठिन है ऐसा विचार आना, बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है, हमने ली नहीं, जैसे हमने मिठाइयाँ और फल फूल नहीं लिए थे तो वापस ले गए, ऐसे ही यहाँ हमें अपशब्द मिले, गालियाँ मिली, हमने नहीं ली तो वापस ले जाओ, उनके लिए सब शांत हो गए। उधर वो व्यक्ति वापस लौटता है, 25-50 कदम चलता है, मन में विचार आता है, आज तो मुझे जो कहना था इन भिक्षुओं से सब कह लिया, क्या क्या बातें कही हैं, लेकिन कैसे बुद्धू सुनते रहे, कुछ भी नहीं कह पाए। देखा, अब थोड़े और आगे बढ़ता है, मन में विचार आता है कि मैंने इतनी बातें कही, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। वो जो एक उसमें बैठा था बीचों बीच, बड़ा सुंदर सा साधु था, वो तो मुस्कुरा रहा था। अरे ये सब ऐसे ही बड़े ढीठ होते हैं। फिर आगे बढ़ा, वो घर के दरवाजे पे पहुंचा, मैंने उनसे इतनी बातें कही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अरे उसने उन्होंने कुछ भी, वो कह सकते थे, वो मुझे मारपीट भी सकते थे, मैं एक अकेला था, वे 25-50 थे, पकड़ करके मार सकते, जरूर कोई बात है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस अब एक ही बात, अब लेटता है तो लेटे चैन नहीं है, मैंने उन्हें इतना कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ी देर के बाद तो अपनी ही बात को दोहराता है और आंसू आना शुरू, और रात के 3-4 बज जाते हैं और न नींद आती है न चैन पड़ती है। कब पहुंच जाऊं उनके चरणों में, जरूर वे कोई पहुंचे हुए साधु हैं, मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अच्छा नहीं किया। और अंधेरी रात में सुबह सुबह उठ करके और भागता है, दौड़ता है, कहां मिलेंगे वे, उनका तो कोई भरोसा नहीं, इस पेड़ के नीचे बैठे थे। और आगे देखता हूँ, आगे जाकर के पता लगता है कि दूसरे पेड़ के नीचे सब लोग बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, ज्यों के त्यों ध्यान में लीन है, सुबह जाकर के चरणों में लौट जा, भगवान कल मैंने बहुत अपराध किया, आपसे बहुत अपशब्द कहे, खोटी बातें कही, उन सब के लिए क्षमा चाहता। बुद्ध तो ध्यान में लीन थे, भिक्षु भी सब ध्यान में लीन थे। जब थोड़ी देर में उठे तो सबसे पहले बुद्ध ने उसे उठा के अपने गले से लगा लिया। उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, अपने चरणों में स्थान दीजिएगा, आप भूल गए क्या मैं वही हूं जिसने कल आपको गालियां दी थी, अपशब्द कहे थे। बुद्ध ने कहा तुम वो हो ही नहीं सकते। अरे मैं वही हूं, कैसे मैं विश्वास दिलाऊं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, वो जो गाली देने वाला था वो कोई और था, ये जो क्षमा मांग रहा है वो तो कोई और है। और वो जो मैं था वो तो किसी और दूसरे पेड़ के नीचे बैठा था, देखो ये तो कोई और पेड़ है, सब कुछ बदल गया, यहां पर भूल जाओ, बहुत मुश्किल है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा कर देना बहुत आसान है लेकिन क्षमा करके भूल जाना बहुत कठिन है। मैंने तुम्हारी गलती को क्षमा कर दिया था, ये भाव वर्षों बना रहता है, मैंने तुम्हें, जानते हो मुझे, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने इतनी बड़ी गलती खाई थी, नहीं वो तो कल की बात को ये कह रहे हैं कि तुम वो हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, इतने प्यार से भरे तुम कोई और हो, कल वो जो घृणा से भरा था वो कोई और था। भैया मुझे बताओ, उस तरह की भावना ने हमारे भीतर कर्मों के आने को रोका कि नहीं रोका, और हमारे जीवन को कितना शांति पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, क्या ऐसा अभ्यास हम नहीं कर सकते हैं? बस इतना ही मुझे कहना, जितना बने इस बात का अभ्यास करने की कोशिश करें, सामने वाला भी अगर हम उसके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसका उदाहरण भी सामने है, वो भी अपनी कषायों को कम करेगा, हम तो अपनी कषायें कम करके अपना भला करते ही हैं, हम अपनी कषायें मंद करके दूसरे का भला भी कर देते हैं, इतनी अच्छी प्रक्रिया ये संवर की है, इस संवर भावना को अपन रोज भाएं और अपने जीवन लाभ लें, इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, यज्ञ की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। कंटक पद में विष कंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेको आप पर भास वेको मानु सेवकानी है, बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य और आनी है, वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम वाणी भारती तो जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख जे। जो विद्या के सागर सुधी, जो विद्या के सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य तो देशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं के सतत केवल ज्ञान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की जय। देवली परम पूज मुंडात्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुंडात्री भव्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय।
हम लोग पिछले दिनों लगातार अपने विचारों में दृढ़ता लाने के लिए और विचारों को एक नई दिशा देने के लिए विचार कर रहे हैं। विचारों की इस निरंतर प्रक्रिया का नाम ही भावना या अनुप्रेक्षा है। इस विचारों की निरंतर प्रक्रिया से हमारे भीतर भावात्मक या भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, हमारी विचार शक्ति भी अविचार की अपेक्षा हम अधिक विचारवान हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति विचारपूर्वक कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम अलग होते हैं, और बिना विचारे कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम सुखद नहीं होते हैं। इसलिए हमें विचारवान होना चाहिए, लेकिन विचारवान व्यक्ति के अंदर भी व्यग्रता बनी रहती है। विचार करूं इस तरह की व्यग्रता भी ठीक नहीं है। वास्तव में जो विचार हमें निर्विचार की अवस्था में पहुंचा दें वही विचार श्रेष्ठ है। हम ये जो निरंतर विचार की प्रक्रिया कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी कुछ क्षण के लिए निर्विचार हो जाना, कुछ क्षण के लिए संकल्प विकल्प शांत हो जाना, हर्ष विषाद मिट जाना, इसके लिए हम ये विचार की प्रक्रिया कर रहे हैं। सिर्फ विचार करने के लिए विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन विचारों से हम मुक्त हो सकें इसके लिए विचार कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों बहुत प्रकार से संसार शरीर और भोगों के बारे में विचार किया है। अनुप्रेक्षा या कि इस विचार की प्रक्रिया ने हमें कई सलाहें दी हैं। एक तरह की सजेस्टोलॉजी है अनुप्रेक्षा, हालांकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट आज तक नहीं खुला सजेस्टोलॉजी का, मैंने तो एक नाम ऐसे ही दे दिया कि एक अच्छी सलाहकार ये अनुप्रेक्षा या कि विचार की प्रक्रिया है जो हमें विशेष रूप से आड़े समय पर अच्छी सलाह देती है। जीवन में दुख के क्षण को हम अच्छा नहीं मानते, सुख के क्षणों को हम अच्छा मानते हैं, लेकिन विचार की प्रक्रिया के हिसाब से तो दोनों ही प्रकार के क्षण हमारे लिए ठीक नहीं है, सुख के क्षण भी और दुख के क्षण। सुख के क्षणों में हम अपना आपा भूल जाते हैं और सुख में ही मग्न हो जाते हैं, दुख के क्षणों में भी हम अपना आपा भूल जाते हैं और उस दुख में इतने अधिक लीन हो जाते हैं कि हम ख्याल ही नहीं रख पाते हैं कि कभी हम सुख का अनुभव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों में जो हमें उद्विग्न नहीं होने देती ऐसी सलाह देती है कि इनको शांतिपूर्वक सहन करो, सुख को भी सहन करना और दुख की स्थिति को भी सहन करना। दुनिया सिखाती है कि दुख को कैसे सहन करना, अनुप्रेक्षा सिखाती है कि सुख को कैसे सहन करना। हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है, ये जो अहंकार है ये भी हमें इस संसार में भटकाता है, उससे भी हमें बचाती है। हमें पिछले दिनों अनुप्रेक्षा ने सलाह दी कि हम इस संसार में दिखने वाली नश्वर चीजों में लिप्त ना हो, क्योंकि ये नश्वर चीजें कुछ दिन हमें सुख देती हैं, फिर जब ये नष्ट होती हैं तो हमें दुख दे करके चली जाती हैं। इसलिए अच्छा है कि हम इनकी नश्वरता को समझ करके और दुख से बच सकें। इतनी बढ़िया सलाह दी है। और वास्तव में जो शाश्वत है, जो हमारी अपनी आत्मा है, जो हमारा अपना धर्म है, जो हमारा अपना स्वभाव है, वो शाश्वत है, उसकी तरफ हम गौर करें। अनुप्रेक्षा ने हमें पिछले दिनों सलाह दी है कि हम दुनिया भर में अपनी रक्षा के लिए लोगों को खोजते फिरते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, संपत्ति हमारी रक्षा करेगी, मकान हमारी सुरक्षा कर देगा, नहीं संसार में कोई शरण नहीं है, तो फिर शरण क्या है? वो हमारा अपना धर्म है, वो हमारे अपने पंच परमेष्ठी हैं, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लिया कि किसी शरण की आवश्यकता नहीं रही, हम उनकी शरण ले लें। ऐसी हमें सलाह है पिछले दिनों अनुप्रेक्षा ने दी, हमें सलाह दी कि यहाँ हम इस संसार में सिवाय जन्म मरण के और कुछ नहीं करते हैं, और यह सबसे बड़ा दुख है। बाकी दुख तो लगे ही हुए हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता बाकी दुखों के चलते कि जन्म मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है, इसी का नाम संसार है। तो फिर मैं ऐसा कोई उपाय करूं जिससे कि मैं इस जन्म मरण से बच सकूं। ये सलाह हमें अनुप्रेक्षा देती है। ये भी देती है कि इस दुनिया में हम जो भी शुभ और अशुभ भाव करते हैं, जो भी शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, उनका फल हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। बताओ, कोई कितना भी हमें हमारे कर्म के फल में बाहर से मदद दे तो दे ले, लेकिन भोगना तो हमें ही पड़े। नहीं, आप हमारे दुख में अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे दुख को कम तो नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? फिर हम दूसरे से क्यों अपेक्षा रखें कि कोई हमारे दुख को कम कर देगा? फिर हम कोई हमारे दुखों को दूर ना करे, मदद ना करे, तो हम निराश क्यों हों? हम क्यों ना ये मान लें कि अपने दुख को तो हमें ही झेलना पड़ेगा। तो कितनी बढ़िया सलाह है कि हम अकेले हैं, अपने सुख दुख का फल भोगने के लिए हम अकेले हैं। और यह जो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई अन्य चीजें दिखाई देती हैं, वे सब भी मेरे से बिल्कुल अलग हैं। मैं उनको एक अपने में मान लेता हूं, लेकिन ये मेरे से अलग है। तो अलग हैं तो फिर मुझे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है, बस इतना ही। अलग हैं इसलिए मुझे उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं सिखाया जा रहा। यहां ये सिखाया जा रहा कि जो चीज जैसी है उसे ठीक वैसा ही समझ के उसके साथ व्यवहार करो। हम अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, फिर शरीर पर आने वाले दुखों को हम अपना मान लेते हैं, तो वे दुख भी हमें अपने लगने लगते हैं। कष्ट और दुख में अंतर क्या है? कष्ट आता है शरीर पर, और जब हम भीतर भी पीड़ा महसूस करते हैं तो उसका नाम दुख है। कितने सारे महामुनि राज हुए हैं, समाधि मरण पाठ में पढ़ो तो उसमें कहते हैं, तो तुम्हारे जीव कौन दुख है? मतलब तुम्हारे तो कोई दुख नहीं है, उनके ऊपर तो सिगड़ी जलती हुई रख दी गई थी, उनके शरीर में तो कष्ट तो हुआ होगा, लेकिन उन्हें उस कष्ट को दुख नहीं माना, मतलब शरीर को अपने से अलग माना। बस, तो शरीर को अपने से अलग मानने से हमारे दुख में कमी आए बिना नहीं रहती। शरीर से अपने को अलग मानना मतलब ये कि शरीर से मोह नहीं करना, तो अलग ही है वो, तो हम ही जो है अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं तो दुख हटाते हैं। इतनी सीधी सी बात हमें विचार की प्रक्रिया से सीख लेनी चाहिए, कभी काम आ जाती है। और शरीर के बारे में और जरा विचार करना चाहिए कि हम इसको बहुत नहलाते धुलाते हैं, बहुत साफ सुथरा बनाते हैं, क्या ये एक बार आखिरी बार धोने नहलाने से साफ सुथरा बन जाएगा क्या? कितनी भी बार सोचते हैं अब की बार तो एकदम बढ़िया हो गया, नहीं, ये फिर सुबह से थोड़ा साफ होता है, दोपहर होते ना होते, शाम ढलते ना ढलते, फिर मलिन हो जाता, फिर ज्यों का त्यों हो जाता। जरा सा इसको आहार नहीं मिले तो उठने बैठने से इनकार कर देता कि नहीं करते, काम नहीं करते। इसको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहो, इसकी सांस संभाल करते रहो, फिर भी ये ज्यों का त्यों। शीर्यन्ते इति शरीराणी, संस्कृत में शरीर की व्युत्पत्ति की है कि शीर्यन्ते इति शरीराणी, जो निरंतर जीर्ण शीर्ण हो रहा है उसका नाम ही शरीर है। और हम ये सोचते हैं कि जे ज्यों का त्यों बना रहे। अब तो महाराज पहले हमने 4 महीना पहले देखो तो तब तो तनक फिर भी आप अच्छी लग रही थी, मगर अब तो शरीर और कमजोर होगा। अच्छा ठीक है भाई, अब शीर्यन्ते इति शरीराणी, अब वो जीर्ण शीर्ण नहीं होगा तो क्या और नया होएगा क्या? पुराना तो होता ही चला जाएगा, जब से उसने जन्म लिया उसके दूसरे दिन एक दिन पुराना हो गया था वो। और कोई भी चीज जितनी पुरानी होती चली जाएगी उतनी ही अधिक मलिन होती चली जाएगी। इस शरीर के बारे में ऐसा विचार करना और फिर इस शरीर का उपयोग कर लेना। ये जीर्ण शीर्ण हो रहा है, मैं जब तक कि ये पूरी तरह जीर्ण शीर्ण ना हो तब तक इसका सदुपयोग कर लूं। जैसे कोई भी चीज अपन लाके घर में रखते हैं खाने पीने की, अब खा लेंगे भैया, खा लो ना, 3-4 दिन की रखी फिर खराब ही हो, जो खा भी लाखने रहे हैं तो क्या करते, फिर जल्दी से उसको खा लेते हैं। इसी तरह ये है कि फिर हमारे काम करने लायक नहीं रह जाएगा जब, तब फिर क्या करोगे? इसलिए जब तक ये शरीर काम करता है तब तक इसका उपयोग कर लो। अपन सोचते हैं कि इसको आराम तल भी दो फिर काम कल काम ले लेंगे। ध्यान रखना, हमारे जीवन का खूब अनुभव है इस चीज का। एक दिन अभी अच्छा चल रहा है, शाम को कहो मामला ठप, फिर बैठे रह जाओ, कुछ नहीं कह नहीं सकते आप। अभी देख रहे हैं आप, सामने ही सामने देख रहे हैं कल क्या स्थिति थी। चुप माने चुप, अब कर लो क्या करना, आपको नहीं कर रहा काम शरीर, नहीं आप आराम करो तो काम करेगा क्या? आंख पर पट्टी बांधे रहो, महीना भर बाद छोड़ेंगे तो रोशनी ज्यादा रहेगी। चली जे कहो पूरे से, एक महीना है सो तो काम कर लू। अपन जी सोचते कि सेहत के धर लू सो काम आए, होता होता नहीं, जितना हो सके कर लो, कल का भरोसा नहीं। कल कंठ में से आवाज निकलेगी कि नहीं कह नहीं सकते, आज निकल रही है तो आज पूरा उपयोग कर लो, बस इतना ही सिखाती है ये विचार की पद्धति। और अपन क्या सोचते हैं कि कल को बचा के धर लो हैं? नहीं, ये तो निरंतर नष्ट होने वाली चीजें हैं, इसके लिए तो जितना बन सके तपस्या के द्वारा उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। फिर हमने अगले दिन ये समझा था कि हम यहाँ जो भी परिणाम करते हैं शुभ और अशुभ, उनके द्वारा हमारे भीतर एक संस्कार बनता चला गया, चाहे वो कैसा भी संस्कार हो, पर जब तक हमारे सब संस्कारों से रहित अवस्था नहीं प्राप्त होगी तब तक हमें सुख नहीं पहुंचेगा। तब हमें सारे कर्मों से रहित होना है, तब क्या करना चाहिए? कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को कम करना चाहिए। बस कर्मों के आगमन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है 24 घंटे, सो जाओ तो भी नहीं रुकती। अपन ये सोचो कि सो जाएंगे तो रुक जाएगी, सोने के बाद और ज्यादा फुर्सत रहती है तो खूब आराम से कर्म और बनते, ये ध्यान रखना। हाँ, काम में लगे हैं तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत मन वचन काय की शुभ क्रिया तो हो रही है, लेकिन सोते समय मन वचन काय की अशुभ और शुभ क्रिया पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, निरंतर होती रहती। और जितनी मन वचन काय की क्रिया होगी उतना ही कर्म का बंध हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे कि अपने घर नाव में अपन बैठे हैं और छेद हो जावे, क्या होता, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर धीरे धीरे भरता जा रहा है, और पूरी नाव भर जाएगी तो डूबे बिना नहीं रहेगी। हाँ, भले ही वो छोटा सा छेद है, इसी तरह मन वचन काय की क्रिया मानो कि इस नाव में छेद है, उसके माध्यम से निरंतर एक धारा आती रहती और डिपॉजिट होता रहता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको उलीचें भी तब भी कुछ नहीं होता जब तक कि वो छेद बंद ना हो। कर्मों के आने की प्रक्रिया को रोकना जब तक संभव नहीं होगा तब तक हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। तो कर्मों के आने को संसार कहेंगे वो हमारे लिए ठीक नहीं है। कर्मों के आने या आश्रव को दोषपूर्ण मानना, निरंतर विचार करना कि मेरे जितने कर्म आते जाएंगे उतना संसार बढ़ता जाएगा, और मैं जितना कर्मों को रोक लूंगा उतना संसार से पार हो जाऊंगा, बस। तो कर्मों के आने की प्रक्रिया भली नहीं है ऐसा विचार करना, और कर्मों के रोकने की प्रक्रिया भली है ऐसा विचार करना, एक हो गई आश्रव अनुप्रेक्षा और एक हो गई संवर अनुप्रेक्षा। नाम जरूर कठिन लगते हैं पर बात तो आसान है। हम जो भी परिणाम करें उनमें जरा विचार करके करें, परिणाम तो करना ही है, भले बुरे दोनों तरह के परिणाम। तो भले परिणामों का रेशियो बढ़ जाए और बुरे भावों का रेशियो कम हो जाए, पहली चीज तो ये है। इतना ही कर सकते हैं, वास्तव में तो ये होना चाहिए कि सब प्रकार के परिणामों से सब कोई भी भावना शांत समता भाव, सबसे श्रेष्ठ तो वही है। हर्ष और विषाद दोनों से रहित अवस्था हो, सुख दुख दोनों से रहित अवस्था हो, लाभ ही अलाभ ही जय पराजय समचित्ता स्थित प्रज्ञा, वास्तव में तो वही इस संसार से पार हो सकता है जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, आत्मस्थ जो हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वही पार हो सकता है। कौन? जो कि लाभ अलाभ में, जय पराजय में, सुख और दुख में, सब में शांत रहता है, समता रहता है, एक्साइट नहीं होता है, डिप्रेस भी नहीं होता, दोनों स्थितियां। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, वास्तव में तो जो पुण्य और पाप दोनों से परे होकर अपने आत्मा में लीन है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, भले बुरे दोनों से पार हो गए, क्यों? क्योंकि आत्मा में लीन हो गए, अब क्या भला और क्या बुरा। हाँ, जब आत्मा में लीन नहीं रहे, बाहर रहें, संसार में रहें, तब क्या भला क्या बुरा ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब फिर बुरा दूर रहे भला काम चलता है। जब आत्मा में लीन हो गए तब फिर दोनों चीजों से परे हो। ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोधें ब्रह्म चोर, या विधि विन निकसे नहीं। नहीं, इसके पहले वाली चीज, इसके पहले वाली, वो क्या है उसका, देखिए भूल गए। नहीं, सदगुरु देय जगाए, मुंह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कर्मों को तो ऐसा मानो जैसे कि वो हमारे घर में चोरी करने आए हुए चोर हो, हमारे रत्नत्रय रूपी धन को लूटने वाले हैं ये कर्म। तो सदगुरु दे जगाए, जागृत होना पड़ेगा, और फिर उपाय करना पड़ेगा। आश्रव अनुप्रेक्षा के बाद जागृति आनी चाहिए कि अरे इस तरह कर्म निरंतर आते ही जा रहे हैं मेरे अंदर, अब क्या करूं। अब जाग जाओ, जब तक हम सोते रहते हैं तब तक ही चोर घुस सकते हैं, और अगर खुटका हो जाए, जग जाएं हम, तो फिर चोर कम से कम आ रहे हो तो आना रुक जाते हैं, और जो है बेबी यहां वहां छुपने लगते हैं, भागने का उपाय करने लगते हैं। नए तो नहीं आते हैं, पुराने वाले भी भागने लगते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ऐसे ही कर्मों के साथ है, अगर हम जागृत हो जाएं, अगर हम मन वचन काय की क्रिया को संभाल लेवें, हम अपनी कषायों को मंद कर लेवें। सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जय चारित्रयी, या तो मन वचन काय की समस्त क्रियाओं को रोक लें, या मन वचन काय की क्रियाओं को समीचीन बना लें, या कि 10 धर्मों को याद करें, या 12 अनुप्रेक्षाएं करें, या कि हम 22 परिषय सहें, या 5 प्रकार का चारित्र का पालन करें, इन सब के द्वारा यह सब भाव 57 मिलकर आश्रो को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन कहां पड़े। ऐसा मंगत राय जी अपनी 12 भावनाओं में हमें संदेश देते हैं। 12 भावनाएं हमें इस तरह उपाय बताती हैं कि ये भाव हैं 57, गुप्ती है, समिति है, अनुप्रेक्षा है, धर्म है, 22 परिषय सहन करना, सब में क्या है, सब में एक ही चीज। अगर इतनी नहीं समझ में आए तो सब में एक ही चीज, समता रखना। बस आचार्य श्री कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति हो और उसके पास एक एक रुपए के करोड़ नोट रखे हो, तो क्या वो रोज रोज गिनेगा क्या कि मैं करोड़पति हूं तो गिन तो लूं करोड़ रुपए हैं कि नहीं। कहते कोई जरूरत नहीं है, अकेली बाजू में जो चाबी धरे बाभर टटोल के देख लो कि हिफाजत ने रखी, तारो तना कैसो कर लो बस, तो करोड़पति। तो ऐसे ही जो है सारे व्रत नियम संयम सब हैं, लेकिन समता रूपी चाबी भर टटोल लो के अगर बा है तो सब ठीक है, हिफाजत है, और अगर समता रूपी चाबी खो गई तो फिर चोरी होने में अब देर नहीं लगने वाली, सब व्रत नियम संयम की चोरी हो जाएगी अगर समता चली गई तो। इतना ही हिसाब। और अगर हम ऐसे समता परिणाम को बनाए रख सकें, साधना इतनी सी है और कोई बहुत बड़ी नहीं है, साधना इतनी ही करनी है। ये व्रत नियम इत्यादि लेते हैं काय के लिए लेते हैं, पेशेंस बढ़ जाए, सहन शक्ति बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए, ये सब चीजें बढ़ती हैं तो समता बढ़ने लगती है। और हर्ष विषाद के बीज, जैसे कि कोई व्यक्ति बीज बोए तो उसका फल भी लगेगा, खूब फल आएंगे उसमें। अब ये ध्यान रखना है कि बीज काहे का बोना, बबूल के बोगे तो कांटे लगेंगे और आम के बोगे तो आम लगेंगे, बहुत सीधा सीधा सा हिसाब। अब हम देख लें कि कौन सा बीज बोना है। बीज बोने के बाद मान लो बीज बो भी दिया है खोटे कर्मों का, तब भी अगर उनका जब उदय आवे तब के लिए भी उपाय बताया है। पहले तो सावधानी रखना, आश्रव भी खोटा नहीं करना, और अगर मान लो हो गया है तो अब खोटा आश्रव ना हो इसका उपाय करना। उपाय क्या है कि उस बीज को अब हम धीरे से इनकार कर दें आगे और बढ़ने से, बस और ना बोएं हम। एक बार आ गया उसकी